नमस्कार। आज हम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही गहरे उद्बोधन तप और योग के मार्मिक पक्ष इस पर बात करेंगे।
नमस्कार। हाँ, ये चर्चा पूरी तरह से पूज्य गुरुदेव के विचारों पर ही आधारित रहेगी।
बिल्कुल।
और हमारा मकसद है कि तप और योग का जो असली मतलब है ना, खासकर जैसे एकाग्रता, ध्यान, इष्ट, इनको समझा जाए।
हाँ, और गुरुदेव ने शुरू में ये साफ कर दिया है कि भाई देखो, आशीर्वाद या कोई सिद्धि ये कोई लूट का माल नहीं है।
सही कहा।
इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो शुरुआत कहाँ से करें?
गुरुदेव कहते हैं पहला कदम है एकाग्रता।
हाँ, एकाग्रता योगी बनने की पहली सीढ़ी, ऐसा मानते हैं वो।
सुनने में तो ये आसान लगता है, पर एकाग्रता इसमें है क्या खास?
देखिए, ये बड़ी दिलचस्प बात है। एकाग्रता सिर्फ कोई आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, ये असल में मानसिक शक्ति का विकास है।
मानसिक शक्ति
कैसे?
अब देखिए ना, जैसे हिप्नोटिज्म है या सम्मोहन जिसे कहते हैं, या कभी कभी कहते हैं नजर लग गई।
हाँ हाँ, सुना है।
यहाँ तक कि अजगर, वो अपनी आंखों की शक्ति से, एकाग्रता से शिकार को खींच लेता है। ये सब क्या है? एकाग्रता ही तो है।
अच्छा।
और जितने भी बड़े विद्वान हुए हैं, कलाकार, वैज्ञानिक, उनकी सफलता का राज क्या है? यही एकाग्र मन। तो मतलब गुरुदेव का सार यह है कि एकाग्रता कोई जादू नहीं, बल्कि एक सधी हुई मानसिक क्षमता है।
ये बात तो समझ आई, एकाग्रता हुई बुनियाद। पर योग का अगला महत्वपूर्ण पहलू आपने कहा ध्यान।
बिल्कुल, ध्यान। और ध्यान के लिए एक लक्ष्य यानी इष्ट का होना बहुत जरूरी बताया गया है।
हाँ, इष्ट। पर ये इष्ट कौन हो, ये सवाल मन में आता है।
बिल्कुल आता है। इष्ट मतलब हमारा लक्ष्य, हमारा आदर्श। जैसे गुरुदेव बताते हैं राम मर्यादा के प्रतीक हैं
और कृष्ण पूर्णता के।
हाँ, लेकिन एक मुश्किल तब आती है जब हम अपने इष्ट देवी देवता के साथ बहुत ज्यादा सांसारिक किस्से कहानियां जोड़ देते हैं।
अच्छा, जैसे?
गुरुदेव ने वो श्री कृष्ण की 16,108 रानियों वाले प्रसंग का उदाहरण दिया था।
हाँ।
और फिर उन्होंने आज के परिवार नियोजन से उसकी तुलना की कि ये बातें कैसे विरोधाभासी लगती हैं।
हाँ, ये तो सोचने वाली बात है।
इससे होता क्या है कि कई बार अध्यात्म में ना विकृतियां आ जाती हैं। पूज्य गुरुदेव का तो मानना था कि परमात्मा एक ही है, अगर अनेक भगवान होंगे तो फिर आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा।
हाँ।
इसलिए इष्ट ऐसा हो जो हमारे व्यक्तित्व को ऊपर उठाए, लक्ष्य की ओर ले जाए। जैसे उन्होंने गायत्री या सविता देवता यानी सूर्य का उदाहरण दिया, जो ज्ञान, ऊर्जा और कितने ही दिव्य गुणों के प्रतीक हैं।
ये इष्ट वाली बात तो बहुत गहरी है। अच्छा, गुरुदेव ने ध्यान के कुछ अलग अलग तरीकों के बारे में भी बताया है, शायद हमारी इंद्रियों से जुड़े हुए।
हाँ हाँ, बिल्कुल। उन्होंने 5 ज्ञानेन्द्रियों के आधार पर ध्यान के 5 रास्ते बताए।
कौन कौन से?
जैसे आंखों के लिए है रूप का ध्यान, त्राटक तिरतियों से किसी मूर्ति पर या दीपक की लौ जैसे किसी प्रकाश बिंदु पर मन टिकाना, ये अग्नि तत्व से जुड़ा है।
अच्छा, और कानों के लिए?
कानों के लिए है नादयोग, मतलब किसी ध्वनि पर ध्यान लगाना। कोई बाहरी आवाज हो सकती है जैसे संगीत या घंटे की आवाज, या फिर अंदर की ध्वनि जैसे ओंकार का नाद।
और नाक?
नाक के जरिए हम करते हैं प्राण योग, अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान लगाना। प्राणायाम भी इसी से जुड़ा है।
ठीक है। जीभ और त्वचा?
हाँ, जीभ से जुड़ा है जप योग, या फिर खेचरी मुद्रा होती है जिसमें जीभ को तालू में लगाकर रस अनुभूति पर ध्यान करते हैं। त्वचा का सीधा जिक्र तो नहीं है, पर हाँ, सिद्धांत रूप में स्पर्श की अनुभूति पर भी ध्यान संभव है।
बाप रे, मतलब ध्यान के भी कितने अलग अलग रास्ते हैं, पर इन सब में सबसे मुश्किल तो मन को टिकाना ही लगता है। मन तो इधर उधर भागता रहता है।
आपने बिल्कुल मुद्दे की बात पूछी, मन पर काबू पाना ये ध्यान के लिए सबसे जरूरी है।
तो कैसे करें?
गीता में भी अर्जुन ने यही सवाल पूछा था कृष्ण से, तो भगवान ने 2 उपाय बताए, वैराग्य और अभ्यास।
वैराग्य और अभ्यास?
हाँ। वैराग्य मतलब उन चीजों से, उन आदतों से मन हटाना जो हमें भटकाती हैं। जैसे गुरुदेव शिविरों में कहते थे ना कि भाई कुछ दिन के लिए अपनी दुनियादारी की चिंताएं छोड़ दो।
हाँ, याद है।
और अभ्यास, अभ्यास मतलब लगातार कोशिश करना, बार बार अपने मन को खींचकर वापस अपने लक्ष्य पर, अपने इष्ट पर लाना, ये रोज का प्रयास है।
तो जब ये एकाग्रता और ध्यान सधने लगते हैं तब क्या होता है? गुरुदेव कहते हैं कि इससे कुछ अद्भुत शक्तियां जाग सकती हैं।
हाँ बिल्कुल, यहीं से बात और गहरी होती है। देखिए, एकाग्रता की शक्ति जब बाहर की दुनिया में लगती है ना, तो वो एक टेलीस्कोप की तरह काम कर सकती है।
टेलीस्कोप की तरह?
हाँ, दूर की चीजें दिखा सकती है। जैसे स्वामी माधवानंद जी का उदाहरण दिया जाता है, उन्होंने अपनी योग शक्ति से जमीन के नीचे पानी का पता लगा लिया था।
अरे वाह।
लेकिन जब यही एकाग्रता की शक्ति अंदर की तरफ मुड़ती है तो हमारे अंदर का जो सूक्ष्म जगत है ना, उसके दरवाजे खुल सकते हैं, सिद्धियां मिल सकती हैं, शरीर के ऊर्जा केंद्र जिन्हें चक्र कहते हैं वो जाग सकते हैं, यहाँ तक कि कुंडलिनी जागरण भी संभव हो सकता है।
ये तो कमाल की बातें हैं। मतलब ध्यान सिर्फ मन की शांति के लिए नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ध्यान ही वो चाबी है जिससे हम अपने अंदर के जगत में घुस सकते हैं।
अच्छा।
इसी से शरीर पर अद्भुत नियंत्रण आता है। संत हरिदास जी का उदाहरण है, वो 6 महीने तक समाधि में रहे थे।
हाँ, सुना उनके बारे में।
हमारी जो सोई हुई अतीन्द्रिय क्षमताएं हैं वो जाग सकती हैं और हम उस परम तत्व से जुड़ सकते हैं। ध्यान से जो एकाग्रता आती है ना, उसकी ऊर्जा सच में चमत्कार कर सकती है, चाहे वो आध्यात्मिक उन्नति हो या दुनिया में सफलता पानी हो।
तो पूज्य गुरुदेव के इस पूरे उद्बोधन का निचोड़ सार क्या समझे हम?
सार यही है कि तब और योग का असली मर्म, असली रहस्य वो एकाग्रता और ध्यान में ही छिपा है।
मतलब चेतना को बाहर से अंदर की ओर मोड़ना।
बिल्कुल, हमारी चेतना आमतौर पर बाहर की दुनिया में ही भटकती रहती है, उसे समेट कर इकट्ठा करके अंदर की ओर मोड़ने की साधना है ये।
और जब ये बिखरा हुआ मन एक जगह टिक जाता है तब उसकी शक्ति असीम हो जाती है।
एकदम सही कहा आपने। जब हम अपने बिखरे हुए मन को समेट कर एक बिंदु पर लगाते हैं, एकाग्र करते हैं, तो उससे जो ऊर्जा पैदा होती है वो अनंत संभावनाओं के दरवाजे खोल देती है,
मन की शांति से लेकर असाधारण सिद्धियों तक।
बिल्कुल, सब कुछ संभव है।
यानी पूज्य गुरुदेव का संदेश एकदम साफ है, ध्यान योग सिर्फ कोई पूजा पाठ का तरीका नहीं है, ये तो अपने अंदर छिपे हुए खजाने को खोलने की एक सुनहरी कुंजी है।
हाँ, और यहीं से एक सवाल उठता है जो हम सबके सोचने के लिए है।
क्या सवाल?
कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को निभाते हुए हम अपने मन को एकाग्र करने और अपनी अंदर की शक्तियों को जगाने के लिए पहला छोटा सा कदम क्या उठा सकते हैं, ये सोचने वाली बात है।